आज हम पूज्य गुरुदेव के विचारों की गहराई में उतरने वाले हैं और एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो पहली नजर में शायद थोड़ा विरोधाभासी लगे।
हाँ बिल्कुल।
विषय है नास्तिक भी उपासना करें। ये उनके शिक्षण ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है से लिया गया है।
और ये सुनते ही जाहिर है पहला सवाल मन में यही आता है
कि कैसे, मतलब जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानता वो उपासना क्यों करेगा और किसकी करेगा, ये तो बात ही समझ नहीं आती।
बिल्कुल, और यही इस पूरी चर्चा को इतना दिलचस्प बनाता है। देखिए, यहाँ पूज्य गुरुदेव का इरादा किसी पर कोई विश्वास थोपना नहीं है,
अच्छा,
वो तो बस उपासना शब्द की परतों को खोल रहे हैं। वो इसे एक धार्मिक क्रिया से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल टूल की तरह देख रहे हैं।
तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रक्रिया, ये तरीका किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक,
हाँ, किसी के लिए भी वो कैसे एक शक्तिशाली व्यक्तित्व विकास का जरिया बन सकती है।
ठीक है। तो मतलब हम धर्म से ज्यादा मनोविज्ञान और आत्मसुधार के नजरिए से बात करने वाले हैं। चलिए फिर इस कुत्थी को सुलझाते हैं।
जरूर।
तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से पूज्य गुरुदेव ने की है। वो कहते हैं कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी ईश्वर को नहीं मानती। जाहिर है इसके पीछे कुछ ठोस वजह होंगी। क्या कारण बताए गए हैं?
इसमें कई बातें हैं। सबसे पहली और सीधी बात है विज्ञान। साइंस हर चीज का सबूत मांगता है ना, जिसे वेरीफाई किया जा सके, टेस्ट किया जा सके। ईश्वर की जो पारंपरिक धारणाएं हैं कि कोई ऊपर आसमान में बैठा है और दुनिया चला रहा है,
वो विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती।
बिल्कुल। फिर अलग अलग धर्मों में जो चमत्कारों की कहानियां हैं, वो आज के तार्किक इंसान को काल्पनिक, क्या कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई लगती हैं।
सही बात है, तार्किक मन के लिए इन कहानियों को मानना मुश्किल तो है।
और देखिए, मजे की बात यह है कि ये उलझन सिर्फ आज की नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी जब ईश्वर को समझाने की कोशिश की, उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, लेकिन आखिर में आके क्या कहा?
नेति नेति
नेति नेति, मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं। उन्होंने खुद ये माना कि जिसे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। वो मन, बुद्धि और वाणी से परे है।
एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब अगर हमारे ज्ञानी ऋषि ही ये कह रहे हैं कि ईश्वर को डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो फिर एक नास्तिक का ये कहना कि मुझे इसका कोई सबूत नहीं मिला, ये तो बिल्कुल लॉजिकल लगता है।
हाँ बिल्कुल,
तो ऐसे में उससे उपासना की उम्मीद करना, ये तो एक तरह से अनरीजनेबल नहीं है।
एग्जैक्टली। और यहीं से पूज्य गुरुदेव कहानी में एक जबरदस्त मोड़ लाते हैं। वो कहते हैं कि रुकिए, हम सब उपासना का मतलब ही शायद गलत समझ रहे हैं।
अच्छा,
वो इस पूरी बहस को ईश्वर है या नहीं से हटाकर इंसान का मन कैसे काम करता है इस पर ले आते हैं।
तो वो उपासना को एक धार्मिक क्रियाकांड से हटाकर एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में देख रहे हैं।
प्रिसाइजली। वो मनाशास्त्र के एक विशेषज्ञ डॉक्टर एटकिंसन का जिक्र करते हैं। उनके हवाले से पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जब कोई भक्त भगवान की उपासना करता है, तो वो असल में किसी बाहरी शक्ति से नहीं जुड़ रहा होता। वो अपने ही मन के अंदर अपनी कल्पना और अपने आदर्शों के हिसाब से एक दिव्य कल्पना चित्र बनाता है।
दिव्य कल्पना चित्र मतलब एक डिवाइन मेंटल इमेज।
हाँ, एक मेंटल इमेज। और उपासना उसी इमेज पर पूरी तरह से फोकस करने, उसमें तल्लीन हो जाने का प्रोसेस है।
एक मिनट, क्या आप इसे और आसान शब्दों में समझा सकते हैं? ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है।
जरूर, इसे आज की भाषा में ऐसे समझिए जैसे कोई अपना मेंटल विजन बोर्ड बना रहा हो।
विजन बोर्ड, ओके।
मान लीजिए आपका लक्ष्य है साहस, तो आप अपने मन में किसी साहसी व्यक्ति, जैसे कोई सैनिक या कोई क्रांतिकारी की एक छवि बना सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य ज्ञान है, तो शायद आप बुद्ध या आइंस्टीन की कल्पना करें।
अच्छा,
पूज्य गुरुदेव के अनुसार उपासना इसी मानसिक छवि पर, अपने चुने हुए आदर्श पर ध्यान लगाने की एक टेक्निक है। ईश्वर उस आदर्श का बस एक प्रतीक है, एक सिंबल।
वाओ, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो क्या स्वामी विवेकानंद जब कहते थे कि हर व्यक्ति का एक अलग ईश्वर है,
हाँ
तो उनका मतलब यही था कि हर कोई अपने मन में अपना विजन बोर्ड बना रहा है?
हाँ पूज्य गुरुदेव इसी तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि भारत में जो 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, उसका रहस्य भी यही है।
अच्छा,
ये कोई लिटरल गिनती नहीं थी। जब प्राचीन भारत की आबादी लगभग 33 करोड़ रही होगी, तो ये काव्यात्मक तरीका था ये कहने का कि हर इंसान के मन में ईश्वर की, या कहें कि अपने आदर्श की, एक अलग छवि है।
और कवियों ने बस उन्हीं अलग अलग मानसिक छवियों का अलंकारपूर्ण वर्णन कर दिया।
बिल्कुल। और फिर 33 करोड़ देवताओं की धारणा मजबूत हो गई।
ये तो कमाल की बात है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अलग अलग कल्चर के लोग अपने ईश्वर की कल्पना भी अपने आसपास की दुनिया और अपनी शक्ल सूरत के हिसाब से ही करते होंगे।
100%। और पूज्य गुरुदेव इसके कुछ बहुत सीधे साधे उदाहरण देते हैं। जैसे एक हिंदू के लिए ईश्वर की छवि कृष्ण, राम या शिव जैसी सुंदर भारतीय वेशभूषा में सजी हुई हो सकती है। वो दयालु हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वहीं एक मुसलमान के लिए खुदा की कल्पना एक नूरानी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की हो सकती है जो आसमान में एक तख्त पर बैठे।
और शायद एक यूरोपियन ईसाई के लिए ईश्वर की छवि एक गोरे लंबे मजबूत शरीर वाले व्यक्ति की होगी जो उनके अपने समाज के आदर्श पुरुष जैसा दिखता हो।
एग्जैक्टली। पूज्य गुरुदेव एक और उदाहरण देते हैं जो शायद आज सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन वो पॉइंट को साबित करने के लिए।
बताइए।
वो कहते हैं कि एक हबशी के लिए उसका ईश्वर शायद उसी की तरह का काला कलूटा और अंगदंगदंग हो सकता है। अब यहाँ इन शब्दों का मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं है।
नहीं, मैं समझ रही हूँ।
बल्कि उस मनोवैज्ञानिक सच्चाई को सामने लाना है कि हम अनजाने में अपने आदर्श की मूर्ति अपनी ही छवि में गढ़ते हैं। ये हमारी मानवीय कल्पना की रचना है, हमारे अपने आदर्शों का प्रतिबिंब है।
तो ये साफ है कि ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव, यहाँ तक कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं,
हाँ,
ये सब भी हमारी अपनी ही कल्पना का हिस्सा है। तभी तो अलग अलग धर्मों की मान्यताओं में इतना विरोधाभास दिखता है।
बिल्कुल। जैसे एक जगह कुर्बानी को सही माना जाता है तो दूसरी जगह उसे हिंसा। एक उपास्य देव को कोई खास प्रसाद चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं तो दूसरे के लिए वो चीज वर्जित हो सकती है। ये विरोधाभास इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये नियम किसी एक बाहरी सत्ता ने नहीं बनाए, बल्कि इंसानी समाज ने अपने अपने आदर्शों के हिसाब से गढ़े हैं।
ठीक है, मैं यहाँ तक आपके साथ हूँ। उपासना मतलब अपने मन में बनाए हुए एक आदर्श पर ध्यान लगाना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, खासकर एक नास्तिक की नजरिए से।
पूछिए।
अगर मुझे पता है कि ये आदर्श या ईश्वर मेरी अपनी ही कल्पना है, मैंने ही इसे बनाया है, तो फिर उस पर ध्यान केंद्रित करने से होगा क्या? ये तो एक तरह का सेल्फ डिसेप्शन, मतलब खुद को बहलाना नहीं हुआ। इसका फायदा क्या है?
ये सबसे जरूरी सवाल है और यहीं उपासना का असल रहस्य, उसका वैज्ञानिक मैकेनिज्म सामने आता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इसका फायदा है और बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि ये एक गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करता है।
और वो क्या है?
सिद्धांत है, आप जिसका चिंतन करते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। यू बिकम व्हाट यू बीहोल्ड।
जो जैसा चिंतन करता है वो वैसा ही हो जाता है। ये तो सुना तो बहुत है, पर क्या ये सच में काम करता है?
हाँ। पूज्य गुरुदेव यहाँ एक ब्रिटिश लेखक लॉर्ड लिटन का जिक्र करते हैं। लॉर्ड लिटन का मानना था कि जब कोई भक्त भगवान के किसी रूप का ध्यान करता है तो वो असल में अपने ही बनाए हुए आदर्श का ध्यान कर रहा होता है।
अच्छा।
और जिस मूर्ति की, जिस इमेज की उपासना मनुष्य लगातार करने लगता है, उसकी अपनी मानसिक चेतना, उसके सोचने का तरीका, उसके गुण उसी सांचे में ढलने लगते हैं। गीता में भी तो यही बात कही गई है, प्रेतों को भजने वाले प्रेतों को, देवताओं को भजने वाले देवताओं को, और मुझे भजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं।
मतलब आपकी चेतना का स्तर वही हो जाता है जिस पर आप अपना ध्यान टिकाते हैं।
बिल्कुल, इसका गहरा मतलब यही है।
इसे समझने के लिए कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है?
बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। सोचिए, एक इंजीनियर को एक शानदार इमारत बनानी है, वो क्या करता है? सबसे पहले उसका एक डिटेल्ड नक्शा, एक ब्लूप्रिंट अपने मन में और फिर कागज पर बनाता है, है ना?
हाँ।
निर्णात उसका ध्यान उसी नक्शे पर होता है। धीरे धीरे वो ईंट पत्थर जोड़कर उस नक्शे को हकीकत में बदल देता है।
ठीक है।
या एक विद्यार्थी है जिसे डॉक्टर बनना है, वो अपने मन में एक सफल डॉक्टर की छवि बनाता है और फिर दिन रात मेडिकल की पुस्तकें पढ़ता है, उसी तरह सोचता है, उसी तरह जीता है। लक्ष्य निर्धारित करके उस पर लगातार फोकस करने से ही तो इंसान उस दिशा में आगे बढ़ता है। उपासना वही कॉन्सेंट्रेटेड फोकस है।
और वो भृंगी और कीड़े वाली कहानी का भी जिक्र है जो अक्सर सुनने को मिलती है।
हाँ, और वो इस सिद्धांत का सबसे शक्तिशाली मेटाफोर है।
वो क्या है?
किंवदंती है कि भृंगी नाम का एक कीड़ा एक दूसरे कीड़े को पकड़कर अपने बिल में ले आता है और उसे डंक मारता रहता है। वो बेचारा कीड़ा हर पल भृंगी के डर से और उसी के बारे में सोचते सोचते कहते हैं कि खुद भी भृंगी बन जाता है। अब ये बायोलॉजिकली सच है या नहीं वो जरूरी नहीं है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये एक असंदिग्ध मनोवैज्ञानिक सच्चाई का प्रतीक है। इंटेंस मेंटल फोकस कैन ट्रांसफॉर्म यू। आपका मन जिस विचार से भर जाएगा आपका व्यक्तित्व वैसा ही आकार ले लेगा।
तो अगर मैं इसे आज की साइंस की भाषा में कहूँ तो ये एक तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसा है।
बिल्कुल।
कि आप जिस चीज पर लगातार ध्यान देते हैं आप अपने ब्रेन को उसी तरह से रीवायर करने लगते हैं। अगर आप करुणा पर ध्यान करेंगे तो आपके अंदर करुणा के न्यूरल पाथवेज मजबूत होंगे। अगर आप साहस पर ध्यान करेंगे तो साहस वाले।
एब्सोल्युटली, आप इसे आध्यात्मिक शब्द उपासना कह लीजिए, या साइकोलॉजिकल टर्म फोकस्ड विजुअलाइजेशन कह लीजिए, या न्यूरोलॉजिकल टर्म टारगेटेड न्यूरोप्लास्टिसिटी कह लीजिए, आखिर में आप एक ही चीज की बात कर रहे हैं।
तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं तो बात ये निकलती है कि पूज्य गुरुदेव के अनुसार उपासना कोई अंधविश्वास या मजबूरी नहीं, बल्कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है।
सही।
एक नास्तिक के लिए इसका मतलब किसी भगवान के आगे झुकना नहीं, बल्कि अपने चुने हुए सबसे ऊंचे आदर्शों जैसे करुणा, ज्ञान, शक्ति, साहस, ईमानदारी, इनको एक रूप देना, एक मेंटल इमेज बनाना।
हाँ, और फिर?
और फिर रोज उस पर अपने मन को एकाग्र करना है।
हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये व्यक्तित्व को निखारने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं, ये सवाल नानेशु हो जाता है। असली सवाल यह है कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं, आप किन गुणों को, किस आदर्श को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं।
सही बात है।
उपासना उस आदर्श के साथ एक होने का, उसे अपने कैरेक्टर में घोल लेने का एक डिसिप्लिन है, एक अभ्यास है।
और ये विचार किसी पे कोई लेबल नहीं लगाता, ये हर किसी को उसकी अपनी बिलीफ सिस्टम के अंदर खुद को बेहतर बनाने का एक प्रैक्टिकल टूल देता है।
सही।
और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है।
क्या अगर हमारा आदर्श, हमारा उपास्य देव हमारी ही रचना है, हमारी कल्पना का मास्टरपीस है, तो अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अपने सबसे अच्छे वर्जन को बनाने के लिए, हम अपने उस आदर्श में किन गुणों और किन शक्तियों को शामिल करना चाहेंगे? अगर आज अपना उपास्य देव खुद बनाना हो तो वो कैसा दिखेगा?